नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि उनके पास क्या कुछ खास है। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। तो श्रोताओं, परिक्रमा के इस के साथ मैं हूं सर फिरोजी और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट अनीता आनंद। नमस्कार अनीता।
नमस्कार सर फिरोजी। हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। एज ऑलवेज फॉर ऑल ऑफ यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। Supreme Court says any order for conducting the NEET UG 2024 afresh has to be on a concrete footing.
न्यायमूर्ति नोंगमेई कापम कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ ली।
India to UN calls for immediate ceasefire in Gaza Strip, urges for unconditional release of hostages.
ओमान तट के निकट पलटे तेल टैंकर के शेष लापता चालक दल के सदस्यों की तलाश जारी।
एंड इन बांग्लादेश कोटा रिफॉर्म मूवमेंट कॉल्स फॉर कंप्लीट शटडाउन अक्रॉस द कंट्री टू पुश द डिमांड फॉर रिफॉर्म इन द कोटा सिस्टम। एंड नाउ टाइम फॉर आवर सेगमेंट डेडलाइन इंडिया, इन विच वी टेक अ लुक एट द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस एट द नेशनल और द ग्लोबल लेवल्स। Today we will talk about the World Listening Day and the Nelson Mandela International Day. Let's begin with the World Listening Day first. How many times in our busy lives do we ever stop just to listen, Sir Ferozi? Listen to the sounds around us, listen to our inner voice, listen to nature, or listen to our family and friends talk. Nowadays nobody seems to have the time to listen because they are just rushing through their everyday lives. Listening is an art, I believe, and that requires patience and to remind people of its benefits. Every year on July 18, people across the globe come together to celebrate the World Listening Day. This unique event, first established in 2010 by the World Listening Project, aims to raise awareness about the importance of listening in our daily lives and also to promote the art of attentive listening. The day encourages individuals to pause, engage with the world around them and truly listen to the sounds, voices, stories that often go unnoticed.
और अनीता जी, किसी की बात को सुनने के लिए सब्र की जरूरत होती है।
जी बिल्कुल।
आप किसी की बात को सब्र के साथ सुनेंगे तभी उसकी बात को समझ पाएंगे और उनका जवाब दे पाएंगे। और जिस तरह दुनिया में स्माइल डे मनाया जाता है, मेन और वीमेन डे मनाया जाता है, उसी तरह आज यानी 18 जुलाई को वर्ल्ड लिसनिंग डे सेलिब्रेट किया जा रहा है।
So the day was conceived, that is the World Listening Day was conceived by World Listening Project, a non-profit organization dedicated to the understanding the world and its natural environment, societies and cultures through the practices of listening and field recording. The date, that is 18th of July, was chosen to honor the birthday of the Canadian composer, music educator and environmentalist R. Murray Schafer, who is renowned for his pioneering work in acoustic ecology and his advocacy for preserving natural soundscapes. Since its inception, World Listening Day has gained global recognition and participation. Each year, the World Listening Project selects a specific theme to focus the celebrations and discussions around listening. Past themes have included Listen to You, Listening to the Ground, and Listening Across Boundaries. There are numerous ways also to celebrate the World Listening Day and cultivate the art of attentive listening. We are listening most of the time, but we are not always attentive, right?
Bilkul.
So here are a few ideas for our listeners. Take a sound walk in your neighborhood. Focus on various sounds you encounter. Organize a community listening event or discussion group. Record or share sounds from your environment using the hashtag World Listening Day. Practice active listening in your conversations with others, giving them your full attention. Also, engage in a group meditation or mindfulness session focused on listening. And the importance of listening also?
जी बिल्कुल अनीता जी, कहा जाता है कि अच्छा स्पीकर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको अच्छा लिसनर होना जरूरी है। जितना आप सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उस हिसाब से आप सुनने वाली बातों को प्रोसेस करके फिर उनका जवाब दे पाते हैं। पर आज का जो हमारी दुनिया है, जो ये जमाना है, इसमें लोग किसी की बात को सुनने का लोगों में सब्र ही नहीं बचा है। हर कोई अपनी बात पहले रखना चाहता है और इसके लिए आप सामने वाली की बात को काटने से भी नहीं बचते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा और जितना आप ऑब्जर्व करेंगे चीजों को उतना ही और सीखेंगे और इसी कारण ये दिन और खास हो जाता है। आज का ये दिन एक मौका है ये समझने का कि अपनी बात कहने के साथ साथ दूसरों की बात को सुनना कितना जरूरी है। तो जैसे कि अनीता जी ने आपको पहले भी बताया कि खुद भी आज आप एक पल को ठहरे और आसपास की आवाजों को सुनकर ऑब्जर्व करें।
एंड हु कैन नो दिस बेटर सर फिरोजी देन वी द रेडियो पीपल हु आर ड्रिवन बाय sounds, who listen to each other and who understand what listening is all about. We create a persona of the people we are listening to, isn't it? And in our fast-paced world, unfortunately, the noisy world, the act of listening is often overlooked. However, listening plays a very crucial role in our personal, professional and social lives. Attentive listening fosters not just understanding, empathy, but also connection. It allows us to learn from others, to appreciate diverse perspectives and to build stronger relationships. Aapne sir Firozi notice kiya hoga, if somebody has a good voice, we immediately get engaged, don't we? We say, aapki awaaz bahut achhi hai. Anna, so listening is that kind of power. We may not like that person's face or personality, but if the voice is good, immediately we get captured, isn't it? So World Listening Day also highlights the importance of listening in the context of environmental conservation. By paying attention to the soundscapes around us, we can gain valuable insights into the health and diversity of our ecosystems. The presence or absence of certain sounds can indicate changes in habitat, species, populations, and overall environmental well-being. Furthermore, by listening to and recording natural soundscapes, we can create a valuable archive of our acoustic heritage. These recordings serve as a reminder of the beauty and fragility of our environment and can inspire efforts to protect and preserve it for future generations. Like we've had all those renowned artists and we have the recordings and we can play them after so many years precisely because we've preserved them. And the value remains, the heritage value of those recordings, the audio recordings remains still. As we celebrate World Listening Day, let's embrace the art of attentive listening. Let's listen to each other just with a little bit more of feeling, isn't it?
हमारा मकसद सिर्फ उन्हें सुनना ही नहीं होना चाहिए, सामने वाले की बात को समझना भी होना चाहिए.
जी, whether we are listening to the stories of others or melodies of music or the whispers of the wind, let us open our ears and our hearts to the richness and complexity of the world around us. In doing so, we may just discover new depths of understanding, compassion and also connection, right? And moving on, we also have today the Nelson Mandela International Day. Nelson Mandela, known as the father of the nation in South Africa, a prominent personality in the history of the world. He's known for fighting for the fundamental rights of each and every person and dedicating his life and service to uplifting the living conditions, strengthening unity and communication, and also standing up for seeking justice for all. He fought for the empowerment of men and women and dedicated his life to this service. Every year, Nelson Mandela International Day is observed to honor his life and contributions to the world. As we celebrate this special day, here are a few facts that we should remember. Sarfarozi.
जी, हर साल 18 जुलाई को पूरी दुनिया नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है। ये दिन नेल्सन मंडेला के जीवन और बुराई के खिलाफ लड़ने की उनकी विरासत के सम्मान में मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला एक क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई, शांति, सुलह और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस को आधिकारिक तौर पर नवम्बर 2009 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। पहला आधिकारिक उत्सव 18 जुलाई 2010 को मंडेला के 92वें जन्मदिन पर मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सामुदायिक सेवा, सामाजिक न्याय और गरीबी के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मान्यता दी।
जी, द नोबेल पीस प्राइज 1993 वाज अवार्डेड जॉइंटली टू नेल्सन मंडेला एंड फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क फॉर देयर वर्क फॉर द पीसफुल टर्मिनेशन ऑफ द अपार्टहाइड रिजीम एंड फॉर लेइंग द फाउंडेशंस फॉर अ न्यू Democratic South Africa.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है। अनीता, देश के विभिन्न भागों में इन दिनों मानसून की जो बारिश है वो खुलकर हो रही है, और यहाँ जब हम ऑफिस आ रहे थे तब भी दिल्ली में हम लोगों ने बिल्कुल पानी बारिश का सामना किया, जिसके कारण कई जगह पानी भी जमा हो गया, और इसी वजह से कई राज्यों में बाढ़ की भी स्थिति बनी हुई है। पंजाब के अनेक भाग अभी भी लेकिन बारिश का इंतजार कर रहे हैं, इससे उमस भरी गर्मी अपने चरम पर है और लोग गर्मी से बेहाल भी हो रहे हैं कई हिस्सों में। इस मौसम के बीच ही अनेक संस्थाएं पौधारोपण के कार्य में जुटी हुई हैं ताकि भविष्य को हरियाली युक्त बनाया जा सके। एक रिपोर्ट।
आमतौर पर जुलाई महीने के इन दिनों में पंजाब में खुलकर वर्षा होती है, लेकिन इस बार मानसून पंजाब से रूठ ही गया लगता है। राज्य के कुछ चुनिंदा जिलों को छोड़कर अधिकांश जिलों में लोगों को मानसून की वर्षा का बेसब्री से इंतजार है। अगर 1 जून से 17 जुलाई तक के वर्षा से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि कुल 87.5 मिलीमीटर वर्षा ही रिकॉर्ड की गई है, जो कि सामान्य वर्षा से करीब 40% कम है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार मानसून के जल्दी ही पूरी तरह सक्रिय होने से ये कमी दूर हो जाएगी, लेकिन अभी वर्षा न होने से लोगों को जबरदस्त उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच छिटपुट वर्षा की फुहारों के बीच ही अनेक सामाजिक संगठन पौधरोपण के पुनीत कार्य में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने ऐसी संस्थाओं का मनोबल बढ़ाया है। हरियावल संस्था और संकल्प कल्याण सोसाइटी के प्रमुख पुनीत खन्ना के अनुसार अधिक से अधिक पौधरोपण समय की मांग है।
देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का आह्वान किया है। हम सभी को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि हम एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाकर उसे पालें। ये कार्य हम सभी मिलकर करें और इसमें अधिकतर पीपल, नीम, बरगद, आम, जामुन, शहतूत, अमरूद, सहजन, ऐसे गुणकारी वृक्षों को लगाएं और माँ प्रकृति और अपनी माता दोनों का नमन करते हुए उन वृक्षों को पालने का संकल्प लें और धरती माता को हरा भरा बनाएं।
निश्चित रूप से वर्षा का क्रम काफी हद तक हरियाली से भी जुड़ा हुआ है, और अगर पर्याप्त पेड़ लगने से वातावरण हरा भरा रहेगा तो न केवल वर्षा का भरपूर आनंद मिलेगा बल्कि धरती के नीचे जल स्तर कम होने की बढ़ती समस्या पर भी समय रहते लगाम लगाने में मदद मिलेगी। परिक्रमा के लिए जालंधर से शिशु शर्मा शांतल।
From Jalandhar, we go over to Gangtok. The Northeast National Service Scheme, that is NSS Festival 2024, was formally inaugurated by the Minister for Sports and Youth Affairs, Rajiv Vesnet, at Manan Kendra, Gangtok, on Tuesday. We have a report by our correspondent.
The festival is being organized by Sikkim State NSS Cell under Sports and Youth Affairs Department, Government of Sikkim, in collaboration with Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. NSS volunteers and program officials from different Northeast states have been participating in the different activity of the camp. State Nodal Officer NSS Lalita Chetri mentioned that Sikkim is organizing this camp for second time after conducted last time in 2022. She added that the festival has theory and practical classes on career counseling, life skill training, personality development and other programs and activities by research person and experts from different fields throughout the camp. She further informed that participants would also be taken on field trip. The camp also has yoga, zumba and other physical activity along with cultural presentation by participants of their respective states. A total of 315 participants have been participating in this camp, which has the closing ceremony on 19th July. Diliram Dulal, Akashwani News, Gangtok for Parikrama.
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन एक प्रमुख उद्योग के रूप में उभर रहा है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इसके विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में निर्मित नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था, और आज 18 जुलाई को उद्घाटन के एक वर्ष पूरा होने पर हृदय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के एक वर्ष पूरा होने और इन एक वर्षों के दौरान विमान सेवाओं को और बेहतर बनाने तथा संरचनाओं के विकास में काफी बल दिया गया है। इन एक वर्षों के दौरान भारतीय विमानन प्राधिकरण की ओर से कई कदम उठाए गए हैं और निवेश किया गया है ताकि जमीनी और हवाई नेविगेशन संरचनाओं को सुदृढ़ किया जा सके। 40,837 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले नए एकीकृत भवन में भीड़भाड़ के समय करीब 1200 यात्रियों को संभालने की क्षमता है और सालाना 50,00,000 यात्री आ जा सकेंगे। पिछले एक वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने डॉपलर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओमनी रेंज का विकास किया है। इससे हवाई नेविगेशन को सक्षम बनाया गया है जो इसकी विश्वसनीयता को और मजबूत करता है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के शुरू हो जाने से अब कम रोशनी और खराब मौसम की स्थिति में भी रात के समय में नागरिक विमान संचालन आसान हो गया है। उड़ान योजना के तहत शिवपुर और कार निकोबार में टर्मिनल भवनों का निर्माण पूरा हो गया है और जल्द ही इन द्वीपों के बीच 19 सीटर फिक्स्ड विंग विमान संचालित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को शुरू करने की दिशा में भी प्रगति हुई है। उम्मीद की जाती है कि इस वर्ष नवंबर में कुआलालंपुर से पोर्ट ब्लेयर के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित हो सकती है। इन सेवाओं के आरंभ हो जाने से द्वीपों में न सिर्फ पर्यटन उद्योग को बल मिलेगा बल्कि स्थानीय बेरोजगारों को भी रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। परिक्रमा के लिए एस मुरली के साथ पोर्ट ब्लेयर से मैं राकेश चंद्रलाल।
And now we go over to Kerala. In Kerala, unveiled last week the new policy initiatives to promote the state as a global hub of generative artificial intelligence, that is Gen AI, by creating a highly enabling ecosystem reinforced by incentives, support and partnerships. A report.
The Kerala State Minister for Industries and Law, P. Raju, made the state's AI declaration at the valedictory function of the 2-day International Gen AI Conclave in Kochi, laying the roadmap for the transformative shift. The conclave was organized by Kerala State Industrial Development Corporation in association with IBM, noting that the state has already identified AI as a priority sector in the present industrial policy. Mr. Raju said that the state government will come out with a dedicated AI policy complying with the environmental, social and governance goals during this fiscal year itself. Based on the policy, support and incentives will be provided to enhance the existing infrastructure and create a more futuristic AI ecosystem. An AI cluster will be established in the state, facilitating the creation of a cluster-based industrial park on a public-private partnership basis. Plug-and-play and incubation facilities will also be set up in the state in association with anchor investors. Identifying the startup ecosystem as a key component in the state's transformative journey, the declaration said that the government will provide financial assistance, including share capital, to startups in the AI segment. AI-based technology groups will be constituted, comprising representatives from AI entities, research institutions, associations and government agencies for ensuring wider stakeholder partnerships. Adoption of AI in various core sectors such as marine genome sequencing, tourism, healthcare, IT will also be focused with the support of the technology group. Adoption of AI to strengthen the governance will be an important component of the policy. Mayusha for Parikrama from Thiruvananthapuram.
And now we take you over on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
We remember social reformer Tukaram Bhau Rao Sate, who died on the 18th of July 1969. Popularly known as Anna Bhau, Sate worked for the upliftment of depressed classes and played a vital role in Sanyukt Maharashtra Chalwal.
Anna Bhau Sate was born on the 1st of August 1920 in Vategaon village, part of present-day Maharashtra's Sangli district, in a so-called lower caste family. He migrated from Satara to Mumbai in 1931 on foot over a period of 6 months following a drought in the countryside. In Bombay, Sate undertook a range of odd jobs. The urban environment of Bombay significantly influenced his writings, which depict it as a dystopian milieu. Though he did not study beyond class 4, Sate wrote 35 novels in Marathi.
Sate's use of folkloric narrative styles like Povada and Lavani helped popularize and make his work accessible to many communities. In his novel Fakira, Sate portrays Fakira, the protagonist, revolting against the rural orthodox system and British Raj to save his community from utter starvation. There are 15 collections of Sate's short stories, of which a large number has been translated into many Indian and as many as 27 non-Indian languages. Besides novels and short stories, Sate wrote a play, a travelogue on Russia, 12 screenplays and 10 ballads in the Marathi Povada style.
Anna Bhau was a significant figure in the Indian People's Theatre Association and in the Samyukta Maharashtra movement, which sought the creation of a separate Marathi-speaking state through a linguistic division of the extant Bombay state. He was influenced by the teachings of Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar and used his stories to amplify the life experiences of depressed classes and workers.
Anna Bhau continued to work for the betterment of the society till his death.
We also remember Mata Rohini Barua, who was sentenced to death on the 18th of July 1935. Born in 1915, Barua was an active member of the Jugantar Party and had participated in the Chittagong Armory Raid. Barua assassinated Sub-Inspector Sayyid Irshad Ali, the tyrant officer in charge of the Gwalundo Ghat police station. Barua was arrested at Noapara village along with Bankim Chandra Sen and sentenced to death. Rohini Barua was hanged on the 18th of December 1935.
We also remember revolutionary freedom fighter Nani Gopal Bhattacharji, a resident of Chittagong, now in Bangladesh. Nani Gopal was a member of the Jugantar Party. He was arrested on the 18th of July 1934 for his revolutionary activities and detained in Chittagong jail. After his release, he took an active part in the Quit India movement of 1942. He was arrested again and detained in Dhaka Central Jail, where he died in November 1943.
We also remember independence activist Ishwar Singh, who took part in the First War of Independence in 1857. He was finally captured and tried for desertion and mutiny against the British authorities. Ishwar Singh was sentenced to 14 years imprisonment with hard labor and irons in November 1858. He died during imprisonment on the 18th of July 1859 in the Andaman Islands.
In the business news today, India's equity benchmark indices Sensex and Nifty rose more than 0.5%. The BSE Sensex advanced by 627 points or 0.78% to close at 81,343. The NSE Nifty up by 188 points or 0.76% to close at 24,801. In the global crude market, Brent crude is trading at $85.06 per barrel. WTI crude is trading at $82.93 per barrel when the reports last came in.
और अब श्रोताओं आपको दे रहे हैं खेल के मैदान की हलचल, जहां स्वीडिश ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में इस समय भारत के सुमित नागल का मुकाबला अर्जेंटीना के मारियानो नवोने से चल रहा है। नागल पहला सेट 4-6 से हार गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में आज राफेल नडाल का मुकाबला ब्रिटेन के कैमरॉन नोरी से होगा। इससे पहले नडाल पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए। नडाल और उनके जोड़ीदार कैस्पर रूड ने फ्रांस के थियो अरिबेग और रोम के सिफिलिन को मात दी।
In cricket, Women's Asia Cup T20 tournament, it'll start from tomorrow in Dambola, Sri Lanka. All matches of the tournament will be played at Rangiri Dambola International Stadium. The inaugural match of the tournament will be played between United Arab Emirates and Nepal in the Group A clash tomorrow.
और अब वक्त है उन हस्तियों को याद करने का जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया में कदम रखा और या इस दुनिया से विदा ली। शुरुआत कर रहे हैं मुबारक बेगम से, जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये भारतीय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी। इन्होंने 1950 से 1970 के दशक के बीच बॉलीवुड के लिए सैकड़ों गीतों और गजलों को आवाज दी थी। साल 1950 और 1960 के दशक के दौरान इन्होंने एसडी बर्मन, शंकर जयकिशन और खयाम जैसे सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों के साथ काम किया था। आइए सुनते हैं उनकी आवाज में ये फिल्मी गीत।
तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली को जाएगी अंधेरे छा।
And today is the death anniversary of the Indian actor, film producer and politician working in Hindi films. We're talking about Rajesh Khanna, born Jatin Khanna in Punjab. Considered as one of the greatest and most successful actors in the history of Indian cinema and known also as the first superstar of Indian cinema.
और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं हद करते हो मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते और मुझे जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं जब मर गया साला मैं ही नहीं तो फिर डर किस बात का
आई एम सॉरी आनंद साहब
साहब ए बाबू मुझे अपनी जिंदगी बड़ी है लेकिन वक्त बहुत कम है इसलिए जल्दी जल्दी जीना पड़ता है हर काम की जल्दी चलो एक ही झटके में आपसे तुम पर तो उतर आए
Well, that kind of also sums up his superstardom, the way he actually lived life, king size. His accolades include 5 Filmfare Awards, and in 2013, he was posthumously awarded the Padma Bhushan, India's 3rd highest civilian honor.
Rajesh Khanna ne lagbhag 163 filmon mein abhinay kiya, Kati Patang, Aan Milo Sajna, Mehboob Ki Mehndi, Haathi Mere Saathi, Do Raaste, Dushman, Bawarchi Aadi inki mukhya filmein hain.
Let's listen to another song picturized on Rajesh Khanna.
तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने सपने सुरीले सपने मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने सपने सुरीले सपने कुछ हंसते
क्या मोहब्बत है ये उनका है काम अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार हम ना
और आज ही पुण्यतिथि है भूपिंदर सिंह की भी ये भारतीय सिनेमा के पार्श्व गायक और गजल गायक थे इनके गाए हुए प्रसिद्ध गीतों में मेरा रंग दे बसंती चोला नाम गुम जाएगा प्यार हमें किस मोड़ पे हुजूर इस कदर आदि शामिल हैं पेश है उनका गाया ये गीत
नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी पहचान है गल याद है
It is also the birthday of Sukhvinder Singh, born on this day in 1971, the Indian playback singer who primarily sings Bollywood songs. He sang Jai Ho in the film Slumdog Millionaire, for which he won a Grammy Award for the best song written for a motion picture, television or visual media. He has also received 2 Filmfare Awards for his singing, and he also sang the song Chaiya Chaiya in the film Dil Se in a duet with Sapna Awasthi, a snippet of a song sung by him.
रुत आ गई रे रुत छा गई रे रुत आ गई रे रुत छा गई रे रुत आ गई रे रुत छा गई रे पीली पीली सरसों फूले पीले पीले पत्ते झूमे पीहू पीहू पपीहा बोले चल बाग में धमक धमक ढोलक बाजे झनक झनक पायल झनके झनक झनक कंगना बोले चल बाग में चुनरी जो तेरी उड़ती है उड़ जाने दे बिंदिया जो तेरी गिरती
Singh got his Bollywood break with this song, Aaja Sanam, in the film named Khilaaf. This performance went largely unnoticed, unfortunately, and he first rose to prominence with the song Chaiya Chaiya for A.R. Rahman's Dil Se. We are playing a song from Chak De India, which actually made him a superstar singer.
कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए डूबे तरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए सरफिरोजी और अनीता को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।